सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं मुख्य विषय से ही अपने डेली ऑडियो लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा हूं। कुछ घटनाएं मेरे पास हैं, कुछ खबरें भी मेरे पास हैं। यदि वक्त मिला तो आज मैं उन पर चर्चा करूंगा, अगर नहीं मिला तो मान करके चलिए कि वे घटनाएं, वे खबरें मिस नहीं होंगी, हम लोग जल्दी ही उन पर आएंगे। तो आइए अब हम सीधे सीधे देखते हैं कि इतिहास के वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने ही चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए, और यदि ये छूट गए हों तो प्लीज आप इन पर एक बार नजर जरूर डाल लें। और यदि आपने इनकी तैयारी कर भी रखी है और आपके पास वक्त हो तो आप इन्हें रिवाइज भी कर लें। रिवीजन से ये जो टॉपिक्स हैं और ज्यादा आपके दिमाग में ताजे हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे और आपकी पकड़ अपेक्षाकृत मजबूत हो जाएगी। इतिहास के साथ कुछ कुछ ऐसा होता है। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने जब इतिहास की तैयारी करने के तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आपको बताए थे, उसमें एक डायमेंशंस फैक्ट का था, तथ्य का था। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें कुछ तथ्यों को आपको याद करना ही पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि जो तथ्य होते हैं वे कुछ इस तरह से सूत्र का काम करते हैं जिसे पकड़ करके आप अनुमान के आधार पर सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। जो तथ्य हैं, अक्सर यह होता है कि कुछ समय के बाद हमारे दिमाग में धूमिल पड़ने लगते हैं, हमें बरगलाने से लगते हैं। तो जब हम लगातार रिपीट करते रहते हैं तो वो तथ्य सॉलिड तरीके से हमारे मस्तिष्क में मौजूद हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुछ समय निकालें और इन टॉपिक्स को सरसरी निगाह से ही सही एक बार जरूर देख लें। फ्रेंड्स, जो इतिहास के टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको मैंने दो भागों में बांटा है। एक को मैंने कहा है अनिवार्य टॉपिक्स। अनिवार्य टॉपिक्स कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे लगभग लगभग हर साल किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्हें मैं कह रहा हूं अनिवार्य टॉपिक्स, यानी कि आप इनकी उपेक्षा तो कर ही नहीं सकते, करना ही आपको नहीं चाहिए। और दूसरे भागों में मैंने रखा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रमुख टॉपिक आप कह लीजिए, महत्वपूर्ण टॉपिक कह लीजिए। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा अनिवार्य टॉपिक से, जिनसे लगभग लगभग हर साल किसी न किसी रूप से कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। लेकिन प्लीज मुझे इतना मार्जिन दे करके चलें कि मैं कह रहा हूं हर साल, तो उसके पहले मैंने शब्द लगाया है लगभग लगभग, क्योंकि पता लगा कि यहां मैं 15 टॉपिक्स आपको ऐसे गिना चुका हूं तो बात खत्म हो गई कि इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए वो टॉपिक्स कौन से हैं जिन्हें मैंने अनिवार्य श्रेणी में रखा है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इस पर कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये बात अलग है कि मैं देख रहा हूं कि कुछ समय से जो इन पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे थोड़े से फैक्ट्स पर आधारित ज्यादा हैं, थोड़े से अंदर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अंदर के प्रश्न कहने का मतलब है कि थोड़ी सी गहराई में जाकर के बातें रखी जा रही हैं आपके सामने। इसका मतलब है कि इन दोनों टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। इसी के साथ ही अगर जैन और बौद्ध दर्शन से प्रश्न नहीं पूछे गए तो फिर किससे पूछे जाएंगे? तो मैंने विकल्प के रूप में जो चुना है वो है वेद विरोधी दर्शन, यानी कि वैदिक विरोधी दर्शन आप कहना चाहिए, जिसके तहत आप जानते हैं कि सांख्य दर्शन आता है, वैशेषिक दर्शन आता है, न्याय है, लोकायत है, ये सारे के सारे दर्शन, मीमांसा वेदांत इसी के तहत आते हैं। इन पर भी आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेना चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत कठिन और जटिल श्रेणी के नहीं होते। अगर सामान्य समझ भी आपकी है तो आप इनसे पूछे गए प्रश्नों को हल करने की स्थिति में अपने आप को, अगर सामान्य सी भी समझ आपकी इन टॉपिक्स के बारे में है तो इनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य तौर पर आप उन्हें हल करने की स्थिति में खुद को पा सकते हैं। फिर दोस्तों हमारा भक्ति काल। भक्ति काल में जो फिलॉसफी है, हालांकि मैं उससे पहले की फिलॉसफी की बात कर रहा हूं जहां से भक्ति काल का उदय हुआ है, या कह लीजिए कि उसके इतिहास का, तो उसमें है अद्वैतवाद से मैं शुरू कर रहा हूं। इस भक्ति काल से पहले की बात है ये अद्वैतवाद। इस बार शंकराचार्य को लेकर के काफी चर्चाएं भी हुई हैं तो इसीलिए अद्वैतवाद थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, करंट में इनकी बात हुई है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, फिर आप पढ़ेंगे विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इन पर भी थोड़ी सी नजर डाल लीजिएगा। ये बहुत कठिन नहीं है, थोड़ी सी भी अगर आप पकड़ रखेंगे तो ये सारी जो द्वैतवाद से जुड़ी हुई जो दर्शन है ये आपके समझ में आ जाएंगे। सगुण निर्गुण, भले सीधे सीधे इस पर प्रश्न न पूछा जाए लेकिन भक्तिकाल को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है, और इसी में है सूफी मत, सूफीवाद आप कह सकते हैं, सूफीज्म। कुछ संत हुए हैं हमारे भक्तिकाल में जो बहुत ही महत्वपूर्ण संत हुए हैं, उनकी रचनाओं के बारे में कभी पूछ लिया जाता है, उनके विचारों के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि एकाद प्रश्न जो मंदिर और मूर्ति निर्माण कला हमारे यहां रही है, दोनों में से किसी न किसी एक पर पूछ लिया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मंदिर निर्माण की कला और मूर्ति निर्माण की जो हमारे यहां शैली रही है, इन पर भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहां जो रेवेन्यू सिस्टम रहा है, रेवेन्यू सिस्टम पर भी एकाद प्रश्न आ जाता है। अब रेवेन्यू सिस्टम तो बहुत लंबा है, क्योंकि ऐतिहासिक काल में कृषि ही मुख्य हमारी अर्थव्यवस्था थी, तो वहां से रेवेन्यू सिस्टम की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जब बहुत ही गौर किया है तो खासकर चार काल इसमें महत्वपूर्ण होते माने, मैंने इस पर बहुत ही गंभीरता से गौर किया है, माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की कोशिश की है, तो मुझे चार बहुत ही महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं या जो काल रहा, वंश रहे हैं, उनके रेवेन्यू सिस्टम महत्वपूर्ण मालूम पड़े। जैसे एक है गुप्ता पीरियड, ये आपको मालूम होना चाहिए, चोला पीरियड, इसके बाद मुगल पीरियड, मुगल पीरियड तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर जो है ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पद्धति जो हमारे यहां आई उसमें जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें थोड़े से परिवर्तन किए गए, तो इन चारों का जो रेवेन्यू सिस्टम रहा है वो आपको मालूम हो। और इसके साथ ही साथ एक प्रश्न मैंने देखा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सीधे सीधे इस टॉपिक से आता है। जब मैं डायरेक्ट कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि एक सरल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, जब मैं इनडायरेक्ट कह रहा हूं तो टॉपिक तो यही होता है लेकिन जो उसके पूछने की जो शैली होती है वो थोड़ी सी जटिल हो जाती है, तो उसे मैंने कहा इनडायरेक्ट। और ये है दोस्तों, जो ब्रिटिश कालीन जो आर्थिक नीतियां रही हैं वो नीतियां क्या रही हैं, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन ब्रिटिश कालीन नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और खासकर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, इसको लेकर के एक प्रश्न लगभग लगभग पूछा ही गया है। तो ये कुछ अनिवार्य टॉपिक्स के बारे में बातें थी। अब मैं आता हूं संभावित महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसे मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दोस्तों इसमें शुरुआत कर रहा हूं मैं सिंधु घाटी की सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, डेफिनेटली इस पर आपकी तैयारी होगी। फिर जो हमारा वैदिक कल्चर रहा है, जो हमारी वैदिक संस्कृति रही है, क्या क्या मान्यताएं रही हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं जो बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि दूसरे लोगों ने भी इस तरह की बातें बताई होंगी आपको, मैं तो केवल अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके बाद जो एम्परर हुए हैं हमारे यहां के, जो सम्राट हुए हैं, तो कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण सम्राट हैं उनके नाम मैं यहां आपको बताना चाहूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद अशोका, खासकर अशोका पे सीधे सीधे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि उनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख रहे हैं उन शिलालेख से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख रहे हैं अशोका के, उनकी विषय वस्तु क्या रही है, उन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। फिर कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं, आप सब जानते ही हैं। फिर हर्षवर्धन, इसके बाद जब मेडिवल पीरियड में आते हैं तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी, देखिए इसमें से कुछ लोग छूट भी रहे हैं, है ना, जैसे बलबन का छूट जाना आपको थोड़ा सा चौंकाने वाला लगेगा कि बलबन को हम कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। वैसे तो आपको पूरा इतिहास पढ़ना ही है, क्योंकि मैंने कल कहा था आपसे कि अगर आप इतिहास को बीच बीच से काट कर पढ़ेंगे तो कड़ियां टूट जाएंगी, फिर आप इतिहास समझ नहीं पाएंगे, तो वो सब आपको पढ़ने ही हैं, जिन पर आपको जोर देना है मैं केवल उनकी बातें कर रहा हूं। दोस्तों फिर जो गुप्तकालीन कला एवं साहित्य रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक इसी तरह से साउथ में जब हम जाते हैं तो चोल और पल्लव वंश, देखिए साउथ में बहुत से शासक हुए हैं लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टि से भी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी, वह चोल और पल्लव वंश। इनकी प्रशासन की क्या विशेषताएं रही हैं और इनकी कला में क्या इनका योगदान रहा है आपको मालूम होना चाहिए। फिर विजयनगर साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। अब हम मॉडर्न इंडिया में आ जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के पहले कुछ महत्वपूर्ण हमारे यहां विद्रोह हुए हैं, ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन ही हमारा पहला विद्रोह था, बड़े रूप में वो पहला विद्रोह था लेकिन इससे पहले बहुत छुटपुट छुटपुट विद्रोह हुए हैं जिनमें हमारी जो जनजातियां रही हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनजातियों के इस योगदान को अब कम से कम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो इस तरह के विद्रोह हुए हैं प्लीज आप उन्हें जरूर देख लें, बहुत गहराई में जाकर के देखने की जरूरत नहीं है, कौन सा विद्रोह था, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हों, उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट परिणाम रहे हों, बस छोटे छोटे हिस्से में आप उन्हें देख लें तो सफिशियंट होगा। फिर दोस्तों हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल आया था, कल्चरल रिनेशा जिसे हम कहेंगे, जिसकी शुरुआत ब्रह्म समाज से हुई थी। इससे भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं, एकाध प्रश्न तो आ ही जाता है, तो इसमें मैं कुछ इस तरह के जो संस्थाएं रही हैं उनके बारे में बता रहा हूं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ज्योतिराय फूले। अब मैं आता हूं प्रमुख आंदोलन, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ मूवमेंट रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के, बस उनके मैं नाम भर ले रहा हूं, उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन जो हमारे यहाँ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, पार्लियामेंट सुधार जो 1909 में आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935, इसमें 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन और फिर इसके बाद महात्मा गांधी और जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका जो योगदान, उसके बारे में। मुझे लगता है कि अगर इतने टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। तो दोस्तों इतिहास के बारे में अब बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 26 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं, 9 नवंबर को पूरी हो जाएंगी, तो इसके लिए सासाराम बिहार के चंदन कुमार ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो चंदन कुमार जी, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से मैं आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से एक दोस्त है पिंटू राम जो बलिया उत्तर प्रदेश से, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।